अल्लाह तआला कहते हैं ये सब करने की बजाय माल के पीछे भाग रहे हो, तुम नमाजें छोड़ रहे हो, तुम घर वालों को नहीं मिलते इतने इतने दिन के माल कमा रहे हो, इधर भागने की बजाय करो क्या, साबिकु इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, दौड़ो भागो, तेजी दिखाओ बख्शिश की तरफ, अपने रब की तरफ, यानी अपने गुनाहों की बख्शिश में की तरफ भागो, जो गुनाहों की आग दिन रात जलाते हो इसको बुझाने की कोशिश करो, यानी दुनिया के पीछे भागने की बजाय तुम अपने गुनाहों की माफी के लिए भागो। इसका फायदा क्या होता है? आप जब दुनिया के पीछे नहीं भागते ना तो दुनिया आपके पीछे भागती है। ये अल्लाह के नबी की एक हदीस का मफहूम है कि वो शख्स जो दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया दुनिया ये चाहिए वो, हर वक्त गम है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। एक खातून थी, किसी मुल्क में मिली तो कहने लगी कि मेरे मियाँ रात को सोते नहीं है। मैंने कहा भाई क्या मसला इनको? कहने लगी ये जिस मुल्क में कारोबार करते हैं जब यहाँ रात होती है तो उधर सुबह हो जाती है। अच्छा तो फिर ये क्या करते हैं? ये नेट पे बैठ के वहां के डॉलर के रेट चेक कर रहे होते हैं। अब ये देख रहे हैं कि मेरा शेयर गिरा है कि गया, और फिर उसके बाद बीमारी। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे आफियत दे, कि बाज दफा शेयर्स के ऊपर नीचे होते ही उनके भी दिल की धड़कन कम होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं बाज लोग सिर्फ अपने खरीदे हुए शेयर्स के रेट कम होने की बुनियाद पे। यकीन करें ये क्या जिंदगी है? बीवी नाराज है इस बात पे कि ये पूरी रात ऐसे बैठते हैं और जब वहां के रेट फाइनल होते हैं फिर कहीं आधी रात के बाद आके सोते हैं कि इनका ध्यान उधर लगा हुआ है। साबिकु इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, ये देखो कितने गुनाहों की आग जलाई हुई है जिसको अब बुझाना है। अभी इस तरह हम बैठ के अपने गुनाहों को गिने ना जरा, सुबह से क्या किए, कितने किए, कितनों का दिल तोड़ा, कितनी नमाजें खराब की, कितने असूल तोड़े। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को इतना गम लग जाए कि वो आइंदा गुनाह करने से पहले अपने आप को रोक ले कि अभी तो पहले ही ढेर लगा हुआ है। तो भागो गुनाहों को माफ कराने की तरफ, नेकियां करो, जैसे भाग भाग के गुनाह किए थे अब भाग भाग के नेकियां करो। और तौबा की शरायत में से ये एक शर्त है कि वो जिस्म जिसको गुनाहों में मोटा किया ना उसको नेकियों में खपाओ, अब उसको अल्लाह के रास्ते में खुलाओ, गम करो अपने गुनाहों पे, रो। व जन्नत अर्दुहा का अर्द समाई वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई या कीमत, अर्ज का लफ्ज दोनों के लिए आता है, विड्थ के लिए भी आता है। हम कहते हैं कपड़े का अर्ज कितना है, चौड़ाई, इससे पता चलता है जन्नत की वसत कि जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन जितनी है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, और हमारा मुशाहदा है कि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है। और अर्ज को कीमत के मानों में भी लेते हैं, कीमत उसकी वर्थ क्या है। देखो वो जन्नत जिसकी वर्थ कितनी है, कार दिस समाई वाल अर्थ, जमीनों आसमान की कीमत के बराबर, यानी सारी दुनिया दे दो तो उसके बराबर जन्नत की यानी वैल्यू आसमान और जमीन की वैल्यू से ज्यादा है। किसके लिए? ओ इद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, तैयार की गई उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। देख लीजिए सारी खुशफहमियां दूर हो जाती हैं जब हम ये कहते हैं सब जन्नत में जाएंगे। अरे तुम्हें क्या पता कौन जाएगा कौन नहीं, सब जाएंगे, वाकई हमें तो नहीं पता, लेकिन ये सोच लेना कि जन्नत में जाना है चोरों ने, डाकुओं ने, जानियों ने, बुरे काम करने वालों ने, तो इस आयत को पढ़ ले। ओ इद्दत माजी का सीगा है, पास्ट टेंस है, तैयार कर दी गई है यानी रेडी है, इस वक्त भी जहन्नुम मौजूद है और जन्नत भी मौजूद है, पर किसके लिए? लिल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और रसूलों पर ईमान। ये कौन सा ईमान है? जुबान का ईमान नहीं है, अमल का ईमान है, क्योंकि रसूल की बात आ गई है ना, तो रसूल पर ईमान तो होता ही उसके उसवे हसना पे चलने का नाम है। तो लिहाजा जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए उनको मिलेगी ये जन्नत। क्या इनके अमलों के बदले में? नहीं, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है उसको देता है। लोग कहते हैं, हम पहले कहते हैं अमलों पे थोड़ी मिलनी है, ये तो अल्लाह के फजल से मिलनी है। और फजल कहते हैं जायद को, फजूल लफ्ज जो है ना वो भी इसी से है, फजला भी इसी से है, एक्स्ट्रा चीज को कहते हैं। यानी फजल से मुराद है कि किसी के अमल इस काबिल ही नहीं है कि उससे जन्नत को खरीदे, मिलेगी अल्लाह की तरफ से बढ़ोतरी से मिलेगी। और ये फजल होगा किस पे? जो नेकियों की पूंजी लेके आएगा, लेकिन वो इतनी थोड़ी होगी कि अल्लाह को उस पर रहम आ जाएगा कि सारी जिंदगी की मेहनतों के बाद क्या लाया ये? ये तो ऐसे ही कि 100 वाली चीज खरीदने कोई गया और 10 का नोट पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं तो सारी जिंदगी की मेहनत के भाई ये 10 ही जमा कर चुका हूँ। तो अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा वाकई ये छोटा ही था, इसके हाथ ही छोटे थे, जो फरिश्तों 90 मेरे फजल से डाल दो और इसको जन्नत दे। लेकिन 10 लाने लाजमी, जो शुरू के नहीं लाएगा ना आखिर के नहीं मिलेंगे। अल्लाह का फजल उस पे होगा जो सारी जिंदगी नेकियों को पाने की कोशिश करेगा। बाकी जो लोग गुनाहों में शेर होंगे उन पे अल्लाह का फजल होगा, क्या वो फरिश्तों ये गुनाहों के ढेर लाए अब इस पे मेरा फजल डाल के इसको जन्नत दे दो, ये नहीं हो सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग है इस आयत को गलत समझने के वजह से आज बड़े लोग बेअमल बैठे हुए हैं। अल्लाह ने सबको जन्नत में ले जाना है क्योंकि उसके फजल से मिलनी है, फजल होना किस पे ये नहीं पता। कोशिशों के बावजूद पूरी नेकियां ना ला सके, और जन्नत इतनी कीमती है कि बंदे की सारी जिंदगी की नेकियां जमा कर लें तो शायद जन्नत में एक कुर्ता भी ना खरीद सके। आप देखिए कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे होते हैं ना जहाँ बड़ी महंगी चीजें मिलती हैं और कुछ जगह सस्ती भी होती हैं। जब आप दुनिया में तकाबुल करते हैं ना कि अच्छा यहाँ ये चीज़ मैं इतने की ले रही हूँ और फलां मुल्क में ये तो इतने की हो जाएगी, फर्क होता है ना। आप सिर्फ चंद घंटे सफर करते हैं तो आपके पैसों की क्या आपकी अपनी वैल्यू बदल चुकी होती है। आप डी वैल्यू हैं, आप समंदर पार करके जाएं देखें कैसी वैल्यू होती है आपकी, लोग आपको सलाम करने लगेंगे, रिश्ते देने लगेंगे क्योंकि लड़का बाहर रहता है। दुनिया में हम इस तरह से वैल्यू बना लेते हैं ना। आप जरा सोचें तो सही कि दुनिया में महंगे से महंगे मुल्क में कोई चीज़ कितनी को महंगी होगी। मेरा ख्याल है जो मेरा जाती मुशाहिदा या मुझे कुछ लोगों ने भी कहा कि शायद नॉर्वे ही दुनिया का सबसे महंगा मुल्क है। अल्लाह बेहतर जाने इससे भी कोई बड़ी चीज़ें होंगी। अभी मैं एक ऐसे मुल्क में गई हुई थी मुस्लिम मुल्क में, तो उनकी करेंसी बहुत बड़ी है, यानी वो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है कि हत्ता के डॉलर और पाउंड भी उससे छोटे हैं। और वहाँ की कीमतें आप चीज़ों की देखें तो चीखें निकल जाती हैं। आप अपनी ज़ुबान में देखें वहाँ अगर आप 10 खर्च करते हैं तो वो आपके अपने मुल्क के कई हज़ार बन चुके होते हैं ना। जन्नत की करेंसी जो है ना वो हसनात है, नेकियाँ, जो आज हम पानी की तरह बहाते हैं। मैं तो कहती हूँ नेकियाँ देना हो ना एक दूसरे को तो माए तरबियत करे बच्चों की कि तुमने पानी पीना है ना तो तुम्हें भाई दे और भाई को मैं दूँ, माँ को बच्चा दे, बच्चे को माँ दे, बीवी को शोहर दे, शोहर को बीवी दे, कि मेरे हाथ से पानी आप पियेंगे तो मुझे नेकी शुरू, मैं अपने हाथ से पीऊंगी तो मुझे नेकी है ना। यानी इतने ट्रिक्स होते हैं ना नेकियों को बढ़ाने के जो हम बिल्कुल जाया कर देते हैं। रोजा खोल रहे हैं ना सभी खा रहे हैं, खजूरें पड़ी हैं हर एक ने लेनी है, और अगर आप मुझे दे दें मैं आपको दे दूं तो मेरे अंदर आपका अजर आपके अंदर मेरा अजर, बिल्कुल वैल्यूज बदल जाती है ना। हम सारी जिंदगी की जो नेकियां जमा करेंगे ना हो सकता है कि उसके इवज जन्नत में हम एक वक्त का खाना भी ना खरीद सके। इतनी महंगी है जन्नत की शर्ट। मैं ये कहने वाली थी कि दुनिया में इतनी भी महंगी लगे ना तो जन्नत की एक एक शर्ट जो है ना वो मिलियन ट्रिलियन नेकियों से मिलेगी। आप ये लगा लें बहुत एक्सपेंसिव चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अला इन सिलतल्लाहिल गालिया, जान लो कि अल्लाह की जन्नत बड़ी कीमती है, वो कोई डिवैल्यू थोड़ी है। आप वही चीज किसी सड़क के किनारे रख के बेच लें तो आप 10 की बेचेंगे, उसी को आप किसी पौश इलाके में समंदर के किनारे के किसी मॉल में बेचें वो 20 गुना बढ़ जाती है। वजह क्या है कि उसकी कीमत उस जगह का किराया, तो क्या जन्नत कीमती नहीं, जिसके लिए आपने फरमाया कि जन्नत में एक कोड़ा रखने के बराबर जगह। कोड़ा क्या होता है? विप, चाबुक, मेरा ले इस कमरे में भी रखा हो तो दिखे ही ना, इतनी पतली सी जगह में आ जाता है। आपने फरमाया कि एक कोड़ा रखने के बराबर जन्नत की जो जमीन का टुकड़ा है ना वो खैरु मिन दुनिया व माफीहा, पूरी दुनिया जो इसमें है, पूरा ग्लोब सोचें और इसके मुल्क सोचें, इसके जहाज सोचें, इसकी गाड़ियां सोचें, इसके महल सोचें, सोने चांदी देखें, इन सब से जन्नत में एक कोड़ा रखने के बराबर जो जगह है ना वो ज्यादा कीमती है। तो आप ये सारा कुछ भी देखें तो जन्नत में एक कोड़ा ही लेंगे, सिर्फ कोड़ा रखने की जगह। हालांकि अर्दुहा कर्द समाई वालर, सबसे अदना दर्जे के जन्नती को जन्नत में कितना मिलेगा? सुबहान अल्लाह। उसका एक खुलासा, एक हदीस मेरे जहन में है जिसको आपके साथ शेयर करूं, पहले कई दफा हो चुकी होगी। आपने फरमाया कि सबसे अदना दर्जे का जो जन्नती है ना जिसको सबसे आखिर में जन्नत में भेजा जाएगा अपनी सजा भुगत के जहन्नुम में जलेगा, व्हाटसोएवर जो भी रीजन होगी आखिर में आएगा, तब जन्नत में आएगा तो कहेगा कि अल्लाह ताला सारे लोग आ गए, सारी जगह तो लोगों ने ले ली, मेरे लिए क्या बचा। ख्याल आता है ना कि हम आखिर में आए, अब तो बचा कुछ ही होगा। अल्लाह ताला कहेंगे तू बता कि तू किस पे राजी है, अगर जितना दुनिया का सारी दुनिया का रकबा था अगर तुझे उतना दे दें तो तू राजी है। तो सोचेगा शायद मेरे साथ मजाक हो रहा है, कहेगा हाँ राजी हूँ। कहा अच्छा उससे डबल, उससे डबल, यानी अल्लाह ताला बढ़ाते जाएंगे और फिर कहेंगे कि जा मैंने तुझे सारी दुनिया से 10 गुना ज्यादा जगह दे दी। ये सबसे अदना दर्जे की बात है, तो आप सोचिए कि आला दर्जे वाले का क्या हाल होगा। असल बात यह कि हमने उस जन्नत की अर्ज या उसकी एर्ज या उसकी कीमत पहचानी नहीं है। कभी हम यहाँ अपने आप को और अपनी चीज़ों को ज़ाया ना करें अगर हमें वहाँ की बात याद आ जाए। एक बहुत ही अच्छे आलिम थे मेरे गुमान के मुताबिक, अब्दुल्ला बहावलपुरी। बड़े सादा मंश थे, यानी प्रोफेसर थे, जाहिर है किसी कॉलेज में पढ़ाते थे लेकिन बिल्कुल सादा थे। तो मैंने एक वाक्य उनकी कैसेट में सुना था, एक बहुत पहले, अब तो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी जन्नत दे। कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को भेजा कहीं कुछ खरीदने के लिए, जाओ दुकान से चीज़ लेके आओ, ऐसी कोई ब्रेड। जब पैसे दिए उसको, कुछ भी दिए होंगे, जब वापस आया उसने चीज़ दी, तो मैंने उसको पूछा कि बेटा पैसे वापस नहीं बचे? तो उसने कहा अब्बा वो 54 बची थी, उस दौर का कोई भी होगा। मैंने दुकानदार से कहा कि छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। कहते हैं मैंने उसको डांटा, मैंने कहा तुझे पता है उस 54 से एक ईंट खरीद सकता था तू, और वो ईंट तो किसी मस्जिद में लगवाता, लेके आ वो वहां क्यों जाया? कि इसको तुझे नहीं चाहिए था ना, उसको किसी अल्लाह के रास्ते में लगा दे कि वही तेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और हम कितने शाह खर्च बनते हैं, नेकियों के मौके हमारे हाथों से यूं पिघलते हैं और हम शुक्र करते हैं हमारी जान बच गई। मैं सोचती हूँ जब भी हमें कोई नेकी की दावत मिलती है, कोई कॉल मिलती है, कोई अल्लाह के दीन की बात मिलती है, या कोई हमें अल्लाह के दीन को सीखने सिखाने के लिए बुलाता है, सच बताएं कि उतनी भी खुशी होती है जो कि किसी के एक वक्त खाने के लिए बुलाने की खुशी हो? अपने दिल को हम पूछ रहे हैं, कोई हमें कहे मेरे घर आइए खाने पे दावत है आपकी, उसकी खुशी, और कोई कहे कि आए जरा 1 घंटा बैठ के कोई अल्लाह की बात करेंगे, चले जाएंगे, हम खुश भी होंगे। मैं आपकी तो बात ही नहीं करी क्योंकि आप तो आए हुए ऑलरेडी, लेकिन अमूमन लोग खुश होते हैं। फौरन क्या होगा, वो मुझे इधर जाना, मुझे उधर जाना। जब कोई ये कहे ना, तावील या उधर या हकीकत भी हो सकती, तो समझ जाएं कि उसको जन्नत की भी कीमत ही नहीं पता। हमारे और सहाबा के ईमान में यही फर्क था कि उनको ये फर्क समझ आ गया था। बस ये छोटा सा नुक्ता आप लोगों को अगर समझा देंगे ना, फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा, वो पूछेंगे कि बताएं हम क्या करें कि हमारा रास्ता सही हो जाए। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं। अब इसके बाद अगली दो आयतों में खुश रहने का राज है, और बड़ी प्यारी लगती हैं ये आयतें। फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरअहा इन्ना ज़ालिका अला अल्लाही यसीर। नहीं आती कोई मुसीबत जमीन पर और न तुम्हारी जानों पर, मगर वो लिखी हुई है किताब में इससे पहले कि हम इनको पैदा करें। बेशक ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। मतलब कि इस आयत का कि तुम्हें इस दुनिया में रहते हुए या अपनी जान में कभी भी कोई मुसीबत आती है ना, तो ये अचानक नहीं आती, ये हमने पहले से लिखा हुआ है। तुम्हारी तकदीर में ये बात बहुत पहले से लिखी हुई थी कि ये मुश्किल तुम पे आएगी, अचानक नहीं आती। अब करना क्या है? मुश्किल आ गई, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, करें क्या? रोएं धोएं? नहीं, फरमाए लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम। हमने तुम्हें ये बात इसलिए बता दी है कि तुम गमजदा न हो उस चीज पर जो तुमसे फौत हो गई। फात का लफ्ज फौत से है, चूक गई, जो तुम्हें नहीं मिला गम क्यों करते हो? 4 दिन की चीज थी, मिल भी जाती तो तुमने इसको छोड़ ही जाना था ना। यानी जब कोई चीज तुम्हें ना मिले, तुम चाह रहे थे मिले मिले मिले, कोई जॉब, कोई रिश्ता, कोई घर, कोई कपड़ा, कोई जेवर, कोई जूती, तुम चाह रहे थे मिले, नहीं मिला, दूसरे ने ले लिया, या तुम नहीं ले सके, तो क्या हुआ? छोड़ो, ला तासव, गम ना करो, तासव आसा यासु से, गम ना करो, मायूस ना हो, जो चला गया उस पर गम ना क्या करो, और वला तफरहू बीमा आताकुम, और ना इतराया करो उस चीज पे जो तुमको मिल गई। नहीं मिलता तो गम ना करो, मिल जाए तो फखर करके इतरा के खुशियां ना मनाओ, क्योंकि वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, क्योंकि अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता किसी मगरूर शेखी होरे को। क्या बताया कि तुम्हें तकदीर के लिखे हुए जो पहुंच रहे हैं ना, ये पहले से लिखे हुए हैं, कोई तुम्हारी तकदीर बदल नहीं सकता। तुम चाहो कि मुझे मिलना है और तुम समझो कि फलां तुम्हारे हिस्से का ले जाएगा और किसी और को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अमूमन ये अंदेशे होते हैं ना, मेरी जॉब कोई और ना ले ले, मेरे हिस्से का रिस्क कोई और ना ले ले, जहां मुझे अपने बच्चों का रिश्ता करना है वहां किसी और के बच्चों का ना हो जाए, ये अंदेशे हैं ना दुनिया में, और इन्हीं अंदेशों की वजह से ताल्लुकात बिगड़ते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो तुम्हारा है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता। आप ये बात कहे ना तो आप ठंडे हो जाएंगे। कभी आपने नीलामी होती हुई देखी है? मेरे जहन में बहुत पहले का मंजर है, टीवी में खबरनामे के बाद स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, मेरे जहन में उसका है कि जब वो बोली बोलते हैं ना तो लोग उछल उछल के कुर्सियों से खड़े हो जाते थे, जिसकी चली गई उसको दूसरे पे आ गई। इसी तरह ऑनलाइन पे भी कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जब लोग बोली देते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा भेंट होती है उसको वो चीज मिलती है, तो लोग मुतमईन बैठे रहते हैं। जब उसमें बिल्कुल आखिरी के चंद सेकंड रह जाते हैं ना तो लोग उस वक्त बोली देते हैं, सबने कीमत सोची होती है क्योंकि ज्यादा ना बढ़ाएं एंड पे देंगे, उस वक्त लोगों की हालत देखने लिए होती है। मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल यही लगता है कि अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि तुम गम क्यों कर रहे हो कि मेरी चीज किसी और को मिल गई। ला तासो, ना गम करो, मा फातकुम, जो चला गया, जो फौत होगी, जो चीज तुमसे छिन गई, क्योंकि ये तुमसे छिननी ही थी, आज ये तुमसे छिनी है, अगर तुम्हें मिल चुकी होती तो क्या तुमने यहां बैठ रहना था। ये है वो अकीदा जो बंदा मोमिन को इत्मीनान देता है, क्या कि मेरे हिस्से का कोई ले नहीं सकता और किसी का हिस्सा मुझे मिल नहीं सकता। आप बताएं क्या रिश्ते सारे खुशगवार हो सकते हैं आपस में अगर ये यकीन आ जाए? बिल्कुल हो सकते हैं कि भाई मेरी चीज किसी ने नहीं लेनी, क्या फिर आप खाना खुलते ही भागेंगे आगे कि मेरे हिस्से की बोटी कोई दूसरा ना ले ले? ये सेल का साइन है। बाद लोग सिर्फ इसलिए दूसरों को नहीं बताते सेल लगी हुई है कि पहले खुद जाके देख ले। मैं सोचती हूँ कितने छोटे छोटे गम इतने बढ़ाए होते हैं, छोटी छोटी बातों पर। कपड़ा जल गया, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो जल गया तो जलने दें, फिर क्या? इसके अलावा और कोई खुश नहीं रह सकता। यकीन करें हम सारी जिंदगी तकदीर से लड़ते हैं और खुशी का राज तकदीर को मानने में है। आप अगर वाकई खुश रहना चाहते हैं ना तो आप कहें कि जो मेरा है वो कहीं नहीं जाएगा और जो मेरा नहीं वो मुझे मिलना ही नहीं। आप पूरी कोशिश कर लें आपको नहीं मिलती वो चीज़। लोग इसी की वजह से दुश्मनियाँ पालते हैं, बुग़्ज़ पालते हैं। सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल ही सारी तकदीरें लिख ली थी। यही शौहर मिलना था, करें सब्र इस, और यही बीवी मिलनी थी, आपको दूसरी नहीं मिल सकती थी, होती तो हो सकता वो आपको कबूल ना करती। आप देखिए किस किस मामले में हम झगड़ते हैं ना, बस दफा भाई बहन सिर्फ इस वजह से कई साल नहीं बोलते कि नहीं या तो मैंने रिश्ता करना था तुमने किसी और को क्यों दे दिया, ऐसा होता? बस औरतें बच्चों वाली हो जाती हैं लेकिन वो जहां से मंगनी छूटती है लोग आपस में नहीं मिले होते कि नहीं जी वहां से की बजाय यहाँ क्यों करती। लड़े जितना लड़े, मैं सोचती हूँ हम में से अक्सर लोग जो गमजदा होते हैं ना दुखी, उसकी वजह या हमारे किस गुनाह की सजा होती है तकदीर को एक्सेप्ट ना करने की, रियलाइज नहीं करते। यही मिलना था, रो रहे हैं, रोते रहे, खाएं पिए बोले। अच्छा बाद लोग गम नहीं लगाते, आपने देखा किसी को कुछ नुकसान हो वो हंसते ही रहते हैं, नहीं मिली एक चीज, नहीं मिली जी, बेटा मांगा नहीं मिला, फिर बेटी हो गई, तो करते रहे होते रहे वो खुश रहते हैं। असल में उनको तकदीर को मानने की जजा मिल रही होती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि ये दुनिया 4 दिन की है, तुम क्यों गम करते हो इसकी वजह से? मिल जाता है तो शुक्र करो, नहीं मिलता तो सब्र करो, यही रास्ता है खुश होने का, और अल्लाह ताला को फखर करने वाले पसंद नहीं है। कौन होते हैं फखर करने वाले? मुख्ताल और फखूर की अब तफसील आगे आ रही है। निल्लज़ीना, या आप इसको पीछे से भी मिला सकते हैं कि कुल्ल मुख्तालिन फखूर लज़ीना यबखलूना, यानी फखर को अब अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ये क्या होता है, वो लोग जो बुखल करते हैं, पहली बात। बुखल क्या होता है कि इंसान जरूरियातें जिंदगी पर भी खर्च ना करे। दूसरा इनका जुर्म क्या है, वह या मुरून नास बिल बुखली, और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं। क्यों? इसलिए कि फिर इनकी हालत दूसरों पे छुपी रहे ना, जब दूसरे भी बुखल करेंगे तो इनको भी होगा। मसलन किसी जगह बात हो रही थी अल्लाह के दीन पे खर्च करने की, एक ने पकड़ के उसमें 10,000 दे दिए, तो अब जिसने नहीं दिए उसको भी तो खुतपुत लगी हुई है ना, तो जो खुद नहीं देता वो दूसरे को कहते छोड़ो दे दो, इनकी तो आदत है। यानी वो उनको भी हुक्म देते हैं कि तुम भी ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, छोड़ो इनको दोगे कल फिर मांगने आ जाएंगे। किसको भी दें, मिसाल दे रही हूँ। यानी जब बंदा खुद कोई नेकी नहीं करता ना, तो दूसरे को भी नहीं करने देता। क्यों? ताकि मेरा ये जुर्म जो है ये दूसरों के सामने ना आए। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वमई यतवल्ला, और जो कोई अल्लाह के हुक्मों से रूगर्दानी करेगा, फइन्नल्लाहा हुवल गनीयुल हमीद, तो बेशक अल्लाह ताला ही बेनियाज और हर तारीफ का मुस्तहिक है। यानी अल्लाह के हुक्मों को सुनो और ना मानो, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि सूरत में बार बार अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की रग़बत दिलाई जा रही है। और बस लोग ऐसे भी थे कि जिनके दिलों में खोट था, वो इस्लाम के लिए अपना माल खर्च करना घाटे और नुकसान का सौदा ख्याल करते थे, खुद भी बुखल करते दूसरों को भी रोकते। कोई देने लगता तो कहते देखो खून पसीने की कमाई अब तुम जाया कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो, और अपनी भी तो बहुत जरूरतें होती हैं। और बस लोग थे कि पूरे घर का सामान लेके आ जाते थे। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के हुक्मों को सुन के भी खर्च करने के लिए नहीं उठते, या तवल्ला, तो अल्लाह को जरूरत थोड़ी है। जो चींटियों को खिला रहा है और पिला रहा है, क्या वो इंसानों को नहीं खिला सकता? जो दुश्मनों को इतनी बड़ी बड़ी जगह दे रहा है कि वो गैर इस्लामी सरगर्मियां करे, क्या अल्लाह ताला इस्लाम की जरूरियात नहीं पूरी कर सकता? कभी आप सोचा करें अल्लाह का हौसला। दुनिया में आप देखिए कितने बातिल अधियान है ना, अल्लाह ने उनको कैसी छूट दी हुई है। इतने बड़े बड़े उनके जमीन के टुकड़े, उनकी इमारतें, उनके असेंबली हॉल्स, और कुफर और शिर्क फैलता है। अल्लाह को किसी के खर्च की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो गनीयुल हमीद है। ना करो उसकी तारीफ। कुछ लोग माल खर्च इसलिए करते हैं कि उनकी तारीफ हो, तुम्हारी तारीफों से बेनियाज है, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें मौका दिया, उसको इस्तेमाल कर लो। और दावत सुनेंगे यहाँ तक।
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد